السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 67، نفلی روزے جو ہم پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیویشن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نفل عبادات کا بھی بے حد اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے اگر ہم دل کی خوشی کے ساتھ اسے ادا کریں. تو اس میں ہم نے داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھیں، ایک دن کا چھوڑ دیں. پھر محرم کے مہینے کے جو روزے تھے اس کی فضیلت ہم نے پڑھی تھی. پیر کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت تھی وہ ہم نے پڑھی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں پسندیدہ عمل کو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی بہت اہمیت آئی ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں. تو اسی بنا پر جو شروع کے 9 دن ہوں گے، یعنی ہم 9 تاریخ کو عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. اور پھر 10 کو تو عید ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر ماہ کوئی بھی 3 روزے رکھنا وہ بھی مستحب ہے. یعنی آپ ایک مہینے میں 3 روزے رکھیں وہ بھی مستحب ہے. پھر ہر ماہ کے پہلے پیر اور پہلے دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشورا وثلاثۃ ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین، رواہ النسائی، حدیث صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے پیر کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو، ایک ایک روزہ، یعنی 3 ہو گئے سمجھیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو کہ آپ کی بیویوں نے اس پر گواہی دی کہ یہ آپ اس طرح سے کیا کرتے تھے. اسی طرح نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، تو جس بھی بیوی کے گھر آپ تشریف لے جاتے اگر وہ کہتی کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، پھر میرا روزہ ہے. اور اگر کچھ کھانے کو ہوتا تو پھر آپ اسے تناول فرما لیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزے کی نیت دن میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر زوال سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے. تو چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تو ہم لوگوں کے جیسے اس طرح کے لوازمات نہیں ہوتے تھے کہ جیسے ہم پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر، پھر رات. وہ تو بس کھانے کو جو ہوتا تھا کھا لیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ظہر سے پہلے یا ظہر کے وقت ہی کھاتے ہوں گے. تو جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کی نیت زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیا بات مشہور ہے کہ فرض روزے کی نیت زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یا 10 بجے سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. فرض روزے کی نیت آپ کو ہر حال میں فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. پھر نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے، یعنی کچھ کھا لے، تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس پر قضا واجب نہیں ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے کلاس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو فورس کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، جبکہ وہ روزے سے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کھا لیا. انہوں نے، ابو دردہ نے کھا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزے کی قضا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے، ایون اگر کسی نے دعوت دی تو اگر کوئی نفلی روزہ تھا کوئی، تو وہ اپنے بھائی کی دعوت قبول کرنے کے لیے اپنا وہ روزہ افطار کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے، یعنی یہ زیادہ پسندیدہ ہے. افضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پسندیدہ، زیادہ بہتر. सियाम अरबईन यानी मुसलसल 40 रोज़ों का चिल्ला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। यह हमारे यहाँ बहुत रखा जाता है। आपको ये मालूम होगा कि रज्जब से शुरू करते हैं ख़ासतौर से कुछ लोग, रज्जब का पूरा महीना और फिर शाबान के 10 दिन 40 दिन रखते हैं, या कुछ लोग जो है रज्जब के 20वीं तारीख से शुरू करते हैं और शाबान का पूरा महीना फिर रोज़े रखते हैं और फिर रमज़ान का महीना उसको मिला लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से टोटल 3 महीने के रोज़े हो गए और ये बहुत ज़्यादा इसका अजर सवाब है। तो ऐसी कोई अहादीस हमको नहीं मिलती हैं बल्कि मना किया गया है। तो ये तो थी नफिल रोज़ों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बातें। अब आइए देखते हैं ममनू और मकरूह रोज़े। अस्सियामु अल ममनू वल मकरूहु। ममनू जिसे मना किया गया है और मकरूह जिसकी कराहत यानी नापसंदीदगी ज़ाहिर की गई है जिसके लिए। ईदुल्फ़ितर और ईदुल्अदहा के रोज़े रखना मना है, यानी ईद के दिनों में रोज़े नहीं रखे जाएंगे। अन अबी उबैदिन रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल शहिदतुल ईद मा उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाहु अन्हु फ़क़ाल हाज़ान यौमानी नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियामिहिमा यौम फ़ितरिकुम मिन सियामिकुम वल यौमुल आख़िरु तअकुलूना फ़ीही मिन नुसुकिकुम रवाहुल बुखारी। अबू उबैद रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु अन्हु के साथ नमाज ईद अदा की। उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा इन 2 दिनों के रोज़े रखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है। पहला दिन जब तुम अपने रोज़े ख़त्म करो और दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो। ये बुखारी की रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि जो ईदैन के रोज़े होंगे वो मना है, मकरूह नहीं कह सकते बल्कि इसको ममनू कहेंगे, ठीक है, रख ही नहीं सकते आप मतलब। और सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा रखना मकरूह है, नापसंदीदा। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक जुमा का रोज़ा रखे तो जायज़ है। मसलन अगर कोई शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़ा रखने का आदी है और किसी दिन जुमा का रोज़ा आ जाता है तो वह जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने वो दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कोई अपनाना चाहता है और इस बिना पर उसने ये आदत डाली है अपनी कि अच्छा आज रोज़ा रखूँगा फिर कल नहीं रखूँगा फिर एक दिन रखूँगा एक दिन नहीं रखूँगा, तो उस हिसाब से जुमा का दिन आ जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से अगर चाँद की 13, 14, 15 जो अय्याम 20 के रोज़े हैं अगर वो आते हैं और उसमें जुमा आता है तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अकेले से अलग से सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा रखना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तख्तस्सु लैलतल जुमअति बिक़याम मिन बैनिल लयाली वला तख़ुस्सु यौमल जुमअति बिसियाम मिन बैनिल अय्यामी इल्ला अन यकूना फ़ी सौमि यसूमुहु अहदुकुम। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा की रात जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात को क़यामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो और ना जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस करो। हाँ अगर कोई शख्स रोज़े रखने का आदी हो और उसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज़ है। ये मुस्लिम की रिवायत है, इन्हें सही है। तो इन्हीं जुमेरात की रात को, जुमेरात की दरमियानी रात को नहीं, फिर जुमा निकलने वाला है तो मखसूस ना करो। अगर पढ़ना है तो रोज़ाना पढ़ो या फिर कोई और दिन भी पढ़ सकते हैं, और अगर किसी के इत्तेफाक से उसी दिन आँख खुल जाती है तो पढ़ने में वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मखसूस ना कर लो उसको। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना जुमेरात को बहुत सारे लोग बहुत अहमियत देते हैं। आपको याद होगा कि जो अक्सर जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में दरवाज़े पर साइल आते हैं तो वो क्या कहते हैं, जुमेरात भरी मुराद, इस तरह के कुछ जुमले कहते हैं ना, या फिर पता नहीं आज जुमेरात है इस तरह का कुछ जुमला कहते हैं कि जुमेरात को तो देना चाहिए इस तरह से। तो बहरहाल ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है कि जुमेरात के दिन को मखसूस कर लेना या उस दिन इबादत के लिए अपने आप को मखसूस कर लेना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। इसको अल्लाह के रसूल ने मना फ़रमाया है और सिर्फ जुमा का रोज़ा रखने से भी अल्लाह के रसूल ने मना फ़रमाया है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल समयतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल ला यसुमु अहदुकुम यौमल जुमा इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बादहु रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कोई आदमी सिर्फ जुमा का रोज़ा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुमा का या जुमा और हफ्ते का। ये भी बुखारी की रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ जुमा का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सौम विसाल यानी शाम के वक्त रोज़ा अफ्तार ना करना और कुछ खाए पिए बगैर अगला रोज़ा शुरू कर देना मकरूह है। عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے تھے کہ وصال کا روزہ رکھتے تھے، صوم وصال جسے کہتے ہیں. ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک دن ابھی سحری کی سمجھے اور روزہ رکھا تو پھر اب وہ روزہ رکھتے چلے گئے آپ، پھر آپ آج شام جب ہوئی تو افطار نہ کیا، پھر اسی کے ساتھ کنٹینیو دوسرا روزہ بھی رکھ لیا بغیر افطار کیے، یعنی مسلسل دو دو دن، یا ہو سکتا اس سے زیادہ بھی رکھتے ہوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام کو رکھنے سے منع فرمایا. تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ تو رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے مخصوص تھے وصال کے روزے، صوم وصال کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو کسی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ کرے کہ بغیر کھائے پیے اس طرح سے وصال کا روزہ رکھے، اور کنٹینیو 40 دن کا روزہ رکھنا وہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے، یعنی کوئی رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی منع ہے. اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا کتنی سہولت ہے. یعنی ہر بات دیکھا جائے تو نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی نیت ہے کیا، ادروائز آپ سیم وہی کام کر رہے ہیں لیکن نیت میں فرق آ گیا تو آپ دیکھیں اس سے کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے روزے ختم کر دینے چاہیے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کو منع کیا گیا ہے. کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو اصل پھر طاقت فرض روزوں کے لیے چاہیے، پھر اس کا شوق یا جذبہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے 15 شعبان کے بعد پھر زیادہ نفلی روزے نہ رکھے جائیں. ہاں اگر کوئی اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے تھے، اس کے جو فرض روزے پچھلے سال کے چھوٹ گئے تھے اور وہ روزے کوئی رکھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. اسی طرح مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے. ان عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، فقلت بلا یا رسول اللہ، قال فلا تفعل، سم و افطر و قم و نم، فان لجسدک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا و ان لزورک علیک حقا لا صام من صام الدہر. متفق علیہ. بہت اچھی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں. سبحان اللہ، کیسا ہمارا دین ہے، کتنا اعتدال پسند، کتنا میانہ روی والا دین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات دی کہ واقعی میں جو اسکالرز کہتے ہیں نا، بہت صحیح بات کہتے ہیں کہ ہمارے والدین سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے. हमारे वालिदैन से बढ़कर हमारे लिए शफीक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ऐसा हमें तरीक़ा सिखाया, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने अपने रसूल को हमारे लिए मबूस किया। आप देखें, पिछले जितनी कौमें तबाह और बर्बाद हुई, उनके रसूलों की कोई तालीमात बाकी नहीं रही या उनके रसूलों की पूरी ज़िंदगी उनके सामने नहीं थी। ईसाई क्यों रहबानियत की तरफ चले गए? ईसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत उनके पास एक तो महफूज भी नहीं थी, और चूंकि उनको उनकी इज़्दवाज यानी शादी से पहले उठा लिया गया, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने उससे पहले उनको अपने पास उठा लिया, तो उनके सामने उनकी ये ज़िंदगी की कोई सीरत मौजूद ही नहीं थी। वो आखिरकार भटक गए। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आपकी जो रातें थी वो भी दिन की तरह रोशन थी, सुभान अल्लाह, उम्मत के लिए। और ये क्यों था? यानी कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो पर्सनल वाक़ये थे कभी खुतबे में नहीं बयान फरमाए, खुतबे में नहीं इरशाद फरमाए, बल्कि जो पर्सनल बातें थी आपकी ये सहाबे कराम पूछते थे आपसे, या बाद में ताबेइन और तबे ताबेइन पूछते थे उम्महातुल मोमिनीन से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात का मामूल क्या था, तो तब उम्महातुल मोमिनीन बताया करती थी। तो उससे उम्मत के सामने आपकी जो रातें थी वो भी दिन की तरह रोशन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी हमारे लिए सहूलत है ना कि हम कैसे इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारें, हमारे अपने बच्चों के साथ मामलात कैसे हों, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात कैसे हों। सारे वाक़ियात अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की सूरत में, सीरत की सूरत में हमारे पास महफूज हैं और आज मौजूद हैं। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे उन तमाम मुहद्दिसीन को, उन उलमाए कराम को, जिन्होंने इन अहादीस के ज़खीरों को हम तक पहुँचाया या उसमें मदद की। अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने यह अहादीस हमारे लिए महफूज करवा दी। आज ये अहादीस पढ़कर हम अपनी कितनी ज़िंदगी आसान हमारी हो गई है ना, ये सोचें कितना आसान तरीका है। दीन बहुत आसान है, यकीन जानिए, अगर जितना आप सुन्नत को फॉलो करेंगे ना आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी, और जितना आप सुन्नत से दूर भागेंगे उतना ज़िंदगी तंग और मुश्किल हो जाएगी। खुसूसन हमारे एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उन लोगों ने जितना सुन्नत से वो भागते गए, हदीसों को दूर किया, तो हम देखते हैं कि दीन बहुत मुश्किल बन गया। दीन को इतना मुश्किल बना दिया कि बस एक मारा और दो टुकड़े, इस तरह का मामला कर दिया, या तो रहबानियत अख्तियार कर ली या बिल्कुल ही दुनिया के बंदे बनकर रह गए। लोग इसीलिए दीन से करीब नहीं आते हैं कि अच्छा, दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने मुश्किल बना दिया उसको। हम लोगों की बातें ले लेते हैं और सुन्नत छोड़ देते हैं। बस हमारे पीर, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर्स, हमारे इमाम और हमारे आलिम, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हदीस में क्या बात मौजूद है। कितनी लीनियंसी है, कितनी सहूलत है। और हमेशा जो फ़िक्र के बारे में जो बात कही जाती है, शायद आप लोगों से भी की होगी, दोबारा सुन लीजिए उसको प्लीज़, कि ये जो हमारे दीन में फ़िक्र है ना, ये हमारे दीन की खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लचक है हमारे दीन की। अब देखें, जो उसूल हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो फ़राइज़ हैं, जो बुनियादी हमारे फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन जो फ़िक्र है उसमें चेंजेस होंगे। और फ़िक्र का मतलब ही ये है कि हालत हाजरा के लिहाज से, यानी हालत हाजरा में जो मसाइल दरपेश हैं उसका हल पीछे यानी गायब से निकाला जाए, अहादीस से निकाला जाए। और सबसे मेन बात यह है कि हालात के लिहाज से अहकाम चेंज होते हैं, जैसी सिचुएशंस आती हैं उस तरह से अहकाम भी चेंज हो जाएंगे। तो ये खूबसूरती है हमारे दीन की कि जैसे मिसाल के तौर पर सबको एक यूनिफॉर्म तकसीम करना हो और आपने सबको चार चार मीटर कपड़ा दे दिया हो, अब कि कोई सेहतमंद है, कोई दुबला पतला है, कोई ऊंचा लंबा है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, समझें, तो सबको चार मीटर तो कपड़ा नाकाफ़ी होगा ना, आपको कैसे देना होगा कपड़ा? सबकी दसामत को मद्देनज़र रखते हुए देना होगा। कोई अगर लंबा चौड़ा है तो आपको उसको ज़्यादा कपड़ा देना होगा, हो सकता है उसको 6 मीटर लगे, किसी को 5 मीटर लगे, किसी को 3 ही मीटर लगे, है ना, हो सकता है। तो ये फ़िक्र है, समझे, फ़िक्र कि इंसान की आदत को सामने रख कर अहकाम दिए जाते हैं। जैसे रोज़ा, जो दायमी मरीज़ है उसके लिए क्या है, वो रोज़ा ना रखे, कोई बात नहीं, वो फ़िदिया दे दे एक मिस्किन को। लेकिन जो अभी सिर्फ टेम्प्ररी कोई बीमार हुआ है, कोई मरीज़ है और उसकी तबीयत बाद में अच्छी हो गई, तो उसके लिए क्या है कि वो उस वक्त तो रोज़ा छोड़ दे, लेकिन बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, वो मिस्किन को खाना नहीं खिला सकता, बल्कि उसको तो रोज़ा ही रखना पड़ेगा कज़ा। तो ये हालात आप देखें, जैसी सिचुएशंस आती हैं वैसे अहकाम भी बदलते हैं, ये हमारे दीन की खूबसूरती है। और ये अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ये वही सहाबी है जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा। बहुत नेक, मुत्तकी और परहेजगार थे, अपने वालिद से पहले ईमान लाए थे। याद है आपको, कहा गया था आपको अपने वालिद से पहले ईमान लाए, अपने वालिद से पहले हिजरत की, और अपने वालिद से सिर्फ ये बहुत कम इनका उम्र का फ़र्क था। जो अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु है, कहा जाता है कि वो सिर्फ 14 या 16 साल के थे तो उनको ये बेटे हो गए थे, यानी ये अपने वालिद से सिर्फ 14 साल छोटे थे, समझे, 14 या 15 साल, शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 14 साल ही छोटे थे। तो सोचें आप कितनी कम उम्र में, उस वक्त मर्दों की भी बाज़ों का शादी हो जाया करती थी, और हम लोग एतराज़ करते हैं सिर्फ आयशा रदी अल्लाह अन्हा के ऊपर कि अच्छा इतनी कम उम्र में उनका निकाह क्यों हुआ। तो बहरहाल अपने वालिद से सिर्फ 14 साल छोटे थे या 12 साल, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, 14 या 12 साल छोटे थे। अपने वालिद से पहले हिजरत की, बहुत नेक और मुत्तकी थे। इस हदीस से पता चल रहा है कि जब अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि अच्छा क्या तुम दिन में रोज़ा रखते हो हमेशा और रात में हमेशा नमाज पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह, करता हूँ मैं। आपने फरमाया नहीं अब्दुल्ला, ऐसा ना करो, बल्कि कभी रोज़ा भी रखो कभी ना भी रखो, क्योंकि सब का तुम पर हक है ना। वाकई में अब वो तो नेकी का काम करना चाहते थे, लेकिन आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मियाना रवि सिखाई, इतेदाल में रहना सिखाया कि नहीं इतनी इबादत भी ना करो, अपने जिस्म का भी इंसान पर हक है। इनकी जब शादी हुई तो कहा जाता है कि इनके वालिद अपनी बहू के पास गए, उनको दुआ वगैरह दी और कहा कि अब्दुल्ला से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना, यानी अपने बेटे के बारे में ख़ुद पूछते हैं, ये तुम्हारा सही ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। तो कहने लगे कि हाँ बहुत ख्याल रखते हैं इन्हें, रोज़ ये इतना ख्याल रखते हैं कि इन्हें कुछ परवाह नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ किधर हूँ। तो अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम था कि अब्दुल्ला ऐसे ही करेगा, इसीलिए मैं पूछने आया। यानी इनको बहुत ज़्यादा इबादत से शगफ था, बहुत दिलचस्पी थी, लिहाजा बस रोज़े और नमाज ही के हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल ने फिर उनको मना फरमाया कि नहीं ऐसा ना करो, बल्कि अपनी बीवी का भी हक अदा करो। और आप देखें ना, उस ज़माने के सास ससुर भी कितने अच्छे होते थे कि वो उल्टा अपने बेटे के बारे में पूछने आते हैं बीवियों से। आज तो मामला बिल्कुल ही उल्टे हो गए हैं, और अगर ना भी वालदेन पूछें तो बीवियाँ ख़ुद ही अपना ख्याल रखने के लिए तैयार करवा लेती हैं। बहरहाल तो एक बहुत अच्छा समझे वो दौर था, अल्लाह करे कि वह दौर वापस आए। तो इससे पता चलता है कि इबादत करनी चाहिए, इबादत पसंदीदा है, लेकिन इतनी भी नहीं जो एतदाल से हट जाए। बाज़ वक़्त कुछ ख़वातीन की आदत होती है ना कि इतनी नवाफिल पढ़ती हैं, इतनी नवाफिल पढ़ती हैं कि हस्बैंड आ रहे हैं, खाना खाने का वक्त है, बच्चे आ गए हैं स्कूल से भूखे हैं, उनकी नवाफिल ही ख़त्म नहीं होती हैं, या फिर उनके ज़िक्र अस्कार ही ख़त्म नहीं होते हैं, दुआ ही ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसी इबादत का इस्लाम हमें हुक्म नहीं देता है कि घर उल्टा सीधा पड़ा है और आप इबादत में लगे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ना कर दे कि बिल्कुल ही एक तरफ का होकर रह जाए। इफ़रात और तफरीत से मना किया गया है कि या तो बिल्कुल ही दीन का हो जाए और फिर बिल्कुल दुनिया छोड़ दे, या फिर बिल्कुल ही दीन को छोड़ दे और दुनिया का बंदा बन जाए। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, आपकी 9 बीवियाँ थी माशाल्लाह, जब वैसे तो 11 थी, लेकिन जिस वक्त आप यानी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था और ज़ैनब बिनत खुज़ैमा का इंतकाल हो गया था, तो 9 बीवियाँ थी उस वक्त आपकी जब आप हयात थे, समझें। अब उस उनमें बैलेंस कायम करना, उनका हक अदा करना, और बेहतरीन आप शौहर थे अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन वालिद थे, बेहतरीन दोस्त थे, तो आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना क्यों बनाई गई है? इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में इसी तरह का मुकम्मल बैलेंस था, आपने सबके हुकूक अदा किए और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। रात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते तो पाए मुबारक में वरम आ जाता था। आयशा रदी अल्लाह ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्यों इतना थकते हैं, क्यों इतना अल्लाह के आगे खड़े होते हैं, आपके पाँव सूज गए हैं? कहने लगे कि ए आयशा, कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? तो शुक्रगुजारी के लिए आप इतनी इबादत करते थे, सुभान अल्लाह। तो आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया, बेहतरीन नबी, अफजलुल अंबिया जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, तफजील बैनर रसूल जायज़ है, लेकिन तफरीक बैनर रसूल जायज़ नहीं है। तो फजीलत तो है, बाज़ में से अल्लाह ताला ने किसी को बाज़ को फजीलत दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। आपने अब्दुल्ला बिन अम्र से कहा कि कि नहीं ऐ अब्दुल्ला, ऐसा ना करो, बल्कि कभी रोज़ा भी रखो, कभी नहीं भी रखो, कभी रात में खड़े भी रहो, कभी सोया भी करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँखों का तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक़ है। तो यह हदीस हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं। तो इस हदीस को हमेशा ही अक्सर पढ़ा करें ताकि हमारी ज़िंदगी में बैलेंस कायम हो इंशाल्लाह। और ये जो चार अब्दुल्ला थे, और कुछ लोग कहते हैं कि पांच अब्दुल्ला, इनको इबादल्ला कहा जाता है, बहुत मशहूर हुए ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, अब्दुल्ला बिन मसूद। और बाज़ लोग कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद की बजाय अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला बिन अब्बास मेन इसमें शामिल हैं, और अब्दुल्ला बिन मसूद को कुछ लोग शामिल करते हैं, कुछ लोग नहीं शामिल करते। तो बहरहाल ये अब्दुल्ला बहुत मशहूर हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत, इनकी खदमात हैं दीन के लिए, और यही वो सहाबी थे पहले जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखी थी सहीफ़े सादिका के नाम से। ये अक्सर असल में सहाबा का ज़िक्र इसलिए दिल चाहता है करना कि हमें भी एक तरह से हमें शौक़ पैदा हो, सहाबे कराम की ज़िंदगी की हालत को जानकर हमारे दिल के अंदर भी वो शौक़, वो तड़प, वो तलब, वो लगन पैदा हो कि हम भी कुछ करने वाले बने। उस ज़माने में जबकि लिखना इतना मुश्किल था, तो ये सहाबी लिखा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तो आप सोचें कि आज के दौर में पेन कितना आसान है पकड़ना। आप जाते हैं, पेन उठाकर लाते हैं शॉप से, लिखना शुरू कर दें, आपको कोई इंक में डुबो डुबो कर या भिगो कर लिखना नहीं पड़ता है। उस ज़माने में तो पेन और इंक भी बहुत मुश्किल थी मिलना, कागज़ मिलना मुश्किल थे, फिर भी उन लोगों ने लिखा। और इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस महफूज रही अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम पढ़ना भी नहीं चाहते, लिखना तो बहुत दूर की बात है, जबकि पेन, इतनी बेहतरीन पेन हमारे पास आज अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी हम लिखना नहीं चाहते। लिखना तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं चाहते। ख़ुद से पढ़ना तो दूर की बात है, कोई पढ़ा दे तो भी सुनना नहीं चाहते। तब आप बताइए हम क्या जवाब देंगे अल्लाह सुभान व तआला को। तो बहरहाल बात हमारी लंबी हो रही है, लेकिन ये भी ज़रूरी थी। आगे देखिए, अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा के रोज़े रखना मना है। अय्याम तशरीक एक्चुअली ये वो दिन होते हैं जब मीना में वक्त गुजारा जाता है, जो 11, 12, 13 होते हैं, और कुछ लोगों ने इसको 10, 11, 12, 13 भी कहा है। बहरहाल लेकिन 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक है, इसके रोज़े रखना मना है। अलबत्त जो हाजी क़ुरबानी ना दे सके वह मीना में अय्याम तशरीक के रोज़े रख सकता है। अन आयशा व इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा क़ाला लम युरख़्ख़स फ़ी अय्याम तशरीक अन यसुमना इल्ला लिमन लम यजिद अल-हदिया रवाहुल बुखारी। आयशा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि अय्याम तशरीक में किसी आदमी को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई, सिवाय उस हाजी के जो क़ुरबानी देने की ताकत ना रखता हो। ठीक है, तो जो क़ुरबानी नहीं देता है, दे सकता है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, तो वो वहाँ पर अय्याम तशरीक में रोज़े रख सकता है, लेकिन बाकी जो हाजी होंगे वो अय्याम तशरीक में रोज़े नहीं रखेंगे। और वैसे भी अय्याम तशरीक के रोज़े रखने को, यानी जो क़ुरबानी के दिन हैं 10, 11, 12, 13, इन दिनों में रोज़े रखने को मना किया गया है दूसरे लोगों को भी। हाजी को अरफात में 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोज़ा रखना मना है। अन मैमुना रदी अल्लाह अन्हा अन्नासा शक्कु फ़ी सियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा फ़अरसलतु इलैही बि हिलाब वहुव वाक़िफ़ुन फ़िल मौक़िफ़ वशरिबा मिन्हु वन्नासु यन्ज़ुरून मुत्तफ़क़ुन अलैह। मैमुना रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने अरफे के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में शक किया, तो उन्हों यानी हज़रत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले से दूध पिया। उस वक्त आप मैदान अरफात के मौक़िफ़ में खड़े थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इसी का पता चलता है कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन सबको पूछने की हिम्मत नहीं होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो लोगों ने मैमुना रदी अल्लाह अन्हा से पूछा कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से तो नहीं है। तो मैमुना रदी अल्लाह अन्हा ने क्या किया कि दूध का प्याला भेज दिया। तो आपने वो दूध का प्याला सबके सामने पिया, तो सबका शक जाता रहा, दूर हो गया कि आप रोज़े से नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हाजी होगा वो मैदान अरफात का रोज़ा नहीं रखेगा, यानी यौम अरफा का रोज़ा नहीं रखेगा। और जो गैर हाजी होंगे उनके लिए यौम अरफा के रोज़े का सवाब क्या पढ़ा था हमने अभी पिछली क्लास में, एक साल के पिछले सगीरा गुना और एक साल के आइंदा साल आने वाले के सगीरा गुना माफ़ हो जाते हैं। फिर नसफ़ शाबान के बाद रोज़े नहीं रखने चाहिए। अनबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िया नसफ़ मिन शाबान फ़ला तसुमु, रवाहु तिरमिज़ी, और यह हदीस सही है। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब नसफ़ शाबान बाकी रह जाए यानी हाफ़ यानी रमज़ान से 15 दिन पहले, तो नफली रोज़े ना रखो। ठीक है, और क्यों मना किया गया, इसका रीज़न या इसकी जो वजूहात उलमाए कराम बताते हैं, ताकि रमज़ान के लिए ताकत बाकी रहे। अनबी हुरैरा सॉरी औरत का अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े रखना मना है। अनबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तसुमुल मरातु वज़ौजहा शाहिदुन यौमन मिन गैरि शहरि रमदानन इल्ला बिइज़्निही, रवाहु तिरमिज़ी। अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने शोहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर सिवाय रमज़ान के रोज़ों के नफली रोज़ा ना रखे। ये तिरमिज़ी की हदीस है और हसन है, यह हदीस ही सही है। तो नफली रोज़ा शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं रखना चाहिए। इससे भी क्या पता चलता है कि इस्लाम हमें जो तालीम देता है उसमें औरत को चाहिए कि वो शोहर की जो भी ख्वाहिश है, जो कि जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो रही हो, वो पूरी करे। तो इस बिना पर बग़ैर शोहर की इजाज़त के नफली रोज़ा ना रखे। इसी तरह सिर्फ आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मकरूह है। 9, 10 और यह 10 और 11 मुहर्रम यानी 2 दिन के रोज़े रखने चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा यकुल हीना साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमर बिसियाम ही क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु यौम तुअज़्ज़िमुहु अल्यहूदु वन्नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कान अल-आम अल-मुक़बिलु अंशा अल्लाह सुमन अल-यौम अत्तासे क़ाल फ़लम याति अल-आम अल-मुक़बिलु हत्ता तुवफ़ियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 मुहर्रम तो यहूद नसारा के नज़दीक बड़ी अजमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, आइंदा साल हम इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे, लेकिन आइंदा साल आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो यौम आशूरा जो 10 मुहर्रम की फजीलत की वजह यह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, इस रोज़ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर ग़लबा अता फ़रमाया था, लिहाजा हम शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, यहूदियों की नस्बत हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, और मुसलमानों को उस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो तब आपने फरमाया, अब जो चाहे 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। ये मुस्लिम की रिवायत है। ठीक है, तो आप देखें कि यहूदियों से मुशाबहत ना हो, लिहाजा आपने सिर्फ एक दिन का मना फरमाया है और उसके साथ कोई दूसरा दिन मिलाने के लिए कहा, या तो 9 को मिला लें या 10 का 11 का मिला लें। तो आप बताएं कि जो दीन इस मामले में भी किसी की मुशाबहत अख्तियार करने से रोकता है, तो कैसे फिर वो दीन चाहेगा कि अच्छा हम गैर मुस्लिम कौमों की गोद में जा पड़ें और जो वो करें हम भी वही करें। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इसी तरह सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना मकरूह है। अन अब्दुल्लाह बिन बसर रदी अल्लाहु अन्हु अन उख्त हिस समाओ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحى شجرة فليمدغها رواه ابن خزيمة عبد الله بن بسر رضي الله عنه ابن بہن سما رضي الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو अगर खाने को और कोई चीज़ ना मिले तो अंगूर की लकड़ी किसी दरख्त की छाल ही चबा लो। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है और ये भी इस हदीस के बारे में यहाँ पर कहा नहीं गया है कि ये हसन है या सही है। बहरहाल इब्ने खुज़ैमा का बस हवाला दिया गया है। تو ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی روزہ رکھ رہا ہے جیسے کہ کنٹینیوشن میں کسی کے روزے آ رہے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔